अरमान ने हल्की हंसी के साथ बात टालनी चाही। सीरियसली, मैं सॉरी कहूंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। बात करते करते दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते से वे अंदर आ रहे थे वहीं नूर खड़ी हुई थी। वो पूरी बातचीत सुन चुकी थी, हर एक शब्द। अचानक अरमान की नज़र उसकी तरफ गई। नूर की आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि चोट थी। उसने बिना कुछ कहे गुस्से से अरमान को एक तीखी नज़र दिखाई, जैसे कह रही हो अब सब साफ हो गया है। अगले ही पल वो तेज कदमों से बाहर की तरफ चली गई। अरमान वहीं ठिठक गया। अरमान उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। नूर, सॉरी, उसकी आवाज़ इस बार मजाक से बिल्कुल खाली थी। नूर रुक गई लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। किस बात के लिए? उसने ठंडे लहजे में पूछा। हर चीज़ के लिए, अरमान ने बिना देर किए कहा। जो कहा, जो सोचा, जो समझे बिना बोल दिया, सब के लिए। नूर ने अब उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नाराज़गी के साथ साथ गहरी चोट भी थी। आपको पता है, वो धीमी लेकिन तीखी आवाज़ में बोली, आप मजाक नहीं कर रहे थे, आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अरमान एक पल के लिए चुप हो गया। देखो, उसने सफाई देने की कोशिश की, मैं सिर्फ सादिया से मजाक कर रहा था। मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, ना ही तुम्हें नीचा दिखाने का इरादा। नूर ने उसकी बात काटते हुए कहा। हाँ, मेरी आंखें और मेरी वॉल चेक करके, उसकी आवाज़ में तंज था। अब वही बातें कर रहे थे, बस आपको ये नहीं पता था कि मैं सब सुन रही हूँ। अरमान समझ गया कि अब आधी अधूरी बातों से काम नहीं चलेगा। उसने गहरी सांस ली और सच बता दिया। असल में, वो बोला, आज मैं किसी लड़की से मिलने वाला था, मुझे लगा कि आप वही हैं। उसी गलतफहमी में मैंने वो सब कहा, फ्यूचर वाइफ तौर पर रिजेक्ट किया था। वो थोड़ा झुका, मेरा और कोई मकसद नहीं था, ना ही मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है। नूर के चेहरे के तेवर धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। गुस्से की जगह अब सोचने ले ली थी। ठीक है, उसने थोड़ी देर बाद कहा, बस एक शब्द, लेकिन उस शब्द में मान जाना भी था और खुद को संभाल लेना भी। फिर भी सॉरी, अरमान ने एक बार फिर कहा, इस बार आवाज़ में सच्चा पछतावा था। नूर बिना कुछ बोले अंदर की तरफ चली गई। उसके कदम तेज थे लेकिन चेहरे पर वो गुस्सा नहीं था जो कुछ देर पहले था। अरमान वहीं खड़ा रह गया। ड्राइवर उस दिन काफ़ी देर से आया था, इसी वजह से जब वे घर से निकलने लगे तब तक चारों तरफ गहरी अंधेरा फैल चुका था। लॉन की लाइटें जल चुकी थीं और हवा में हल्की ठंडक घुल गई थी। नूर गेट की तरफ बढ़ी तो रेहाना बेगम ने प्यार से उसे आवाज़ दी, तुम आती रहना मुझसे मिलने बेटा। नूर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जी, मैं आया करूँगी, उसने शांति से जवाब दिया। रेहाना बेगम ने एक पल सोचा, फिर अपनापन दिखाते हुए बोली, ऐसा करना, जहाँ तुम्हारी यूनिवर्सिटी है ना, रेहान उसी रास्ते से आता जाता है, रोड भी वही पड़ता है, जब भी तुम्हें आना हो बस फ़ोन कर दिया करना, रेहान तुम्हें ले आया करेगा। रेहाना बेगम की बात सुनकर रेहान ने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ लिखा था, मॉम, आप क्या कह रही हैं? वो कुछ बोलने ही वाला था कि नूर की आवाज़ सुनाई दी। बिल्कुल भी नहीं, उसके शब्द सख्त थे और लहजे में कोई झिझक नहीं थी। जिन लोगों के दिल में हमारी कोई इज्जत नहीं होती, नूर ने सीधी नज़र से सबकी तरफ देखते हुए कहा, हम उन लोगों के साथ आते जाते नहीं हैं। एक पल में माहौल बदल गया। सब लोग हैरानी से उस लड़की को देखने लगे जो अब अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। पहले अरमान, अब सीधे रेहान, और यहाँ तक कि रेहाना बेगम भी, सब उसके शब्दों की चपेट में आ गए थे। रेहाना बेगम स्तब्ध थीं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नूर इतना साफ और कड़ा जवाब देगी। फरीद खान ने माहौल संभालने की कोशिश की। उन्होंने नूर की तरफ देखते हुए कहा, बेटी, अब किस बात की शिकायत है? अरमान तो तुमसे माफ़ी भी मांग चुका है। उनकी आवाज़ में समझाइश थी लेकिन नूर की आंखों में अब भी वो टीस बाकी थी। नूर ने धीरे से अपनी नज़र रेहान की तरफ घुमाई। रेहान एकदम चौंक गया। मैंने क्या किया? उसने खुद को बिल्कुल बेगुनाह समझते हुए पूछा। नूर ने एक पल उसे देखा, ऐसी नज़र से जिसमें ना गुस्सा था ना नफरत, बस एक गहरी ठंडक थी। हाँ बेटा, रेहान ने क्या किया? रेहाना बेगम ने भी हैरानी और थोड़ी चिंता के साथ पूछा। नूर ने उनकी तरफ देखा, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक ठहरी हुई चोट थी। आपने कुछ कहा नहीं, वो धीमी लेकिन बेहद साफ आवाज में बोली, लेकिन हमारी इंसल्ट जरूर हुई है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, हैरानी साफ छलक रही थी। किस तरह, कहाँ पर? किसी ने धीमे से पूछा। इकबाल अब तक चुप थे, उन्होंने आगे बढ़कर कहा, नूर, क्या हो गया है तुम्हें? सच में हर किसी से शिकायत है क्या? अब बस करो। नूर ने पहली बार अपने अब्बा की तरफ देखा। अब्बा, उसकी आवाज़ भर आई, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इनके साथ नहीं आऊँगी। रेहान का सब्रे जवाब दे गया, लेकिन तुम मुझसे क्यों नाराज हो? वो झुंझलाकर बोला, पागल हो क्या? नूर ने उसकी तरफ देखा, एक लंबी ठंडी नजर। आप खुद ही सोचिए। बस इतना कहकर वो चुप हो गई। रेहान के पास जवाब नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि गलती कहाँ हुई। रेहाना बेगम भी उलझन में पड़ गईं। क्या सच में कुछ ऐसा हुआ है जो हम समझ नहीं पाए? वो मन ही मन सोचने लगी। माहौल फिर से भारी होने लगा था। तभी इकबाल ने फैसला करते हुए कहा, चलो बेटा चलते हैं। उन्होंने नूर का हाथ थामा और उसे गाड़ी की तरफ ले गए। उनके चेहरे पर थकान भी थी और चिंता भी। उन्हें डर था कि अगर अब और देर हुई तो नूर अपने स्वभाव के मुताबिक कोई और बड़ा बवाल खड़ा कर देगी, और वो अपनी बेटी के मिजाज को अच्छी तरह जानते थे। नूर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। उसकी आंखें सामने थीं, लेकिन दिल कहीं और उलझा हुआ था। इकबाल और नूर जब गाड़ी से उतरे तो रात काफी गहरी हो चुकी थी। इकबाल ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उम्र में इकबाल से थोड़ा छोटा, चेहरे पर बनावटी मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक। कैसे हैं इकबाल भाई साहब? उस आदमी ने जरूरत से ज्यादा अपनापन दिखाते हुए कहा। ठीक है, इकबाल ने औपचारिक सा जवाब दिया। आदमी की नजर अचानक पीछे खड़ी नूर पर जा टिकी। नूर के सिर पर दुपट्टा था और ऊपर से उसने चादर भी ओढ़ रखी थी। फिर भी उसकी नजरें जिस तरह नूर पर ठहर गईं, वो नजर इकबाल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उस आदमी रशीद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज अंदर ही रुकेंगी आप लोग? इकबाल ने कोई खास जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सिर हिलाया। वो और नूर अंदर चले गए। पीछे पीछे ड्राइवर भी उनका सामान उठाकर अंदर आ गया। ये घर इकबाल की फूफी का था। उम्र में वो काफी बड़ी थी, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में अब भी अपनापन और अपनत्व था। उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी जो उन्हीं के साथ रहती थी। रशीद उसी बेटी का शौहर था, यानी इकबाल की फूफी का दामाद। सब लोग बैठक में आकर बैठ गए। फूफी ने नूर को पास बुलाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन इकबाल का ध्यान बार बार रशीद की तरफ चला जा रहा था। उसकी नजरें बार बार नूर पर टिक जाती थीं, बिना किसी वजह, बिना किसी जरूरत। इकबाल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। आप लोग खाना खा लेंगे? फूफी ने प्यार से पूछा। नहीं फूफी, इकबाल ने संयमित आवाज में कहा, हम लोग रास्ते में खा चुके हैं। नूर ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। इकबाल ने उठकर वो सामान निकालना शुरू किया जो वो अपनी फूफी के लिए लाया था, कपड़े, दवाइयां, कुछ जरूरी चीजें। ये सब आपके लिए है फूफी, वो एक एक करके चीजें देते हुए बोला। फूफी की आंखें भर आईं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, उन्होंने दुआ दी। उधर रशीद अब भी चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी नजरें अब भी नूर को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थीं। उधर सभी लोग अपने अपने बेडरूम में सोने के लिए जा चुके थे। सादिया रहमान के कमरे में रेहान के पास बैठी हुई थी। वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, नूर का बिहेवियर ऐसा क्यों था? मतलब वो आपसे इतनी नाराज क्यों थी? रेहान ने लापरवाही से जवाब दिया, उसे अटेंशन चाहिए थी इसलिए ऐसा कर रही थी। साइको है।